कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। बाहर रात की खामोशी खिड़की से अंदर रिस रही थी। सोफे पर टिककर बैठे विक्रम की आंखों में अब भी तनाव की परछाइयां थीं। वो चुपचाप टेबल पर रखे गिलास में पानी भरकर पी गया। उसके माथे पर अब भी हल्की शिकनी थी। वहीं दूसरी ओर मोनी बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसका शॉल जमीन पर गिरा हुआ था और चेहरे पर उतरी थकान के बीच एक अलग सी चमक थी। विक्रम ने अपनी कोहनी घुटनों पर टिकाई और झुककर अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। उसने कोई शब्द नहीं कहा। मोनी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे उठकर उसके पास चली आई। उसकी हल्की गुलाबी साड़ी चलते समय जमीन पर रगड़ खा रही थी। इतना गुस्सा क्यों करते हो खुद पर? मोनी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। विक्रम ने धीरे से उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन मोनी ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कह दिया ना, तुम कभी नहीं समझोगी। विक्रम की आवाज गहरी और भारी थी। मोनी झुकी, उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए बोली, तो समझा दो, क्या मैं तुम्हारी हूं ही नहीं? तुम्हारी बातें, तुम्हारे गुस्से, तुम्हारी खामोशियां, सबको महसूस करती हूं मैं। फिर क्यों दूर धकेलते हो? विक्रम ने उसकी ओर देखा। उसके होंठ कांपे, लेकिन वो चुप रहा। मोनी अब उसकी गोद के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसके चेहरे की नमी और आंखों का लालपन साफ छलक रहा था। मोनी ने धीरे धीरे उसका हाथ पकड़कर अपने दिल पर रख लिया। महसूस करो, यहां सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कन है। चाहे तुम जितना मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। और तुम भी? उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अचानक से मोनी का संतुलन बिगड़ गया और वो उसके सीने से टकरा गई। दोनों के बीच की दूरी अब नाम मात्र रह गई थी। विक्रम की सांसें उसके गालों से टकरा रही थीं। मोनी के बाल उसकी ठुड्डी पर बिखर गए थे। तुम पागल हो मोनी, विक्रम ने धीमी लगभग बुदबुदाहट सी आवाज में कहा। मोनी की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ, पागल हूं, और वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके शब्द जैसे आग में घी डाल गए। विक्रम ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया, उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई और फिर उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। मोनी के लिए ये क्षण जैसे सब कुछ था। उसकी आंखें बंद हो गईं। उसके हाथ धीरे धीरे विक्रम की गर्दन के चारों ओर लिपट गए। वो पल और गहरा होता चला गया। कमरे की खामोशी अब सिर्फ उनकी सांसों और दिल की धड़कनों से भर गई थी। विक्रम ने उसे सोफे पर धीरे से पीछे धकेला, खुद उसके ऊपर झुक गया। मोनी ने आंखें खोलीं और उसके चेहरे को सहलाया। उसकी उंगलियों ने विक्रम के जबड़े की सख्त लकीरें महसूस की। अब कहो, बेवकूफ हूं मैं? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। विक्रम ने उसके माथे पर होंठ रखे। हाँ, बेवकूफ हो, लेकिन यही बेवकूफी मुझे रोक लेती है। मोनी की आंखों से आंसू बह निकले, पर होंठों पर मुस्कान थी। वो आंसू उसके गालों पर बहकर विक्रम के होंठों से छू गए। तुम्हें खो नहीं सकती, विक्रम ने उसके गाल से आंसू पोंछते हुए कहा, और मैं तुम्हें भुला नहीं सकता। उनके बीच का ये पल और गहरा हो गया। कमरे की चार दीवारी, दीवारों पर लगी तस्वीरें, खिड़की से आती चांदनी, सब जैसे गवाह बन गए थे उनके इस टूटते बनते रिश्ते के। मोनी ने धीरे से उसका चेहरा अपनी हथेलियों में लिया और फिर से उसके होंठों को छुआ। इस बार चुंबन में सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि एक अजीब सी तड़प थी, मानो बरसों का अधूरापन एक ही पल में निकल रहा हो। विक्रम ने उसके बालों में हाथ फेरा, उसकी बीट को थामा और उसे अपने सीने से कस लिया। दोनों की सांसें एक दूसरे में घुलती चली गईं। समय जैसे थम गया था। कुछ देर बाद जब दोनों थोड़ा अलग हुए, तो मोनी उसके सीने पर सिर रखकर बोली, विक्रम, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी सबसे बड़ी भूल भी हो और मेरी सबसे बड़ी चाहत भी। विक्रम ने उसकी कमर कसते हुए कहा, मोनी, मुझे मत परखो, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं। मैं जो चाहता हूं उसे हर हाल में हासिल करता हूं। मोनी ने आंखें बंद कर ली और उसके सीने से और लिपट गईं। तो फिर मुझे भी हासिल कर लो, हमेशा के लिए। कमरे का माहौल अब सिर्फ उनकी सांसों और दिलों की धड़कनों से गूंज रहा था। मोनी का सिर अब भी विक्रम के सीने से लगा हुआ था। उसकी उंगलियां उसकी शर्ट को कसकर पकड़े हुए थीं, मानो छोड़ देने से वो फिर अकेली रह जाएगी। अचानक उसके भीतर से एक सिसकी निकली। विक्रम ने झुककर उसकी पीठ पर हाथ फेरा। मोनी, उसने धीरे से पुकारा, लेकिन मोनी अब खुद को रोक नहीं पाई। आंसू उसकी आंखों से बेतहाशा बहने लगे। उसका सीना जोर जोर से उठने लगा। क्यों, क्यों मुझे इतना पराया कर देते हो? उसके शब्द टूटते हुए निकले। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर भी तुम्हारे लिए अजनबी हूं, क्यों विक्रम? वो उसके सीने पर घूंसा मारने लगी, धीरे धीरे, दर्द से भरी थपकियों की तरह। मैं तुम्हें चाहती हूं जितना कोई और नहीं चाह सकता, फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, तुम्हें लगता है कि मैं समझ नहीं पाती। लेकिन विक्रम, उसकी आवाज सिसकियों में डूब गई, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। विक्रम ने उसका चेहरा अपने हाथों में थामा। उसकी आंखों से आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन आंसू बहना बंद नहीं हुए। मोनी ने उसकी उंगलियां पकड़ ली और उन्हें अपने गाल से चिपका लिया।
देखो ये सब तुम्हारी वजह से है, हर आंसू हर पीड़ा सब तुम्हारी वजह से, फिर भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकती। उसकी सांसें भारी हो गईं, होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो धीरे धीरे उसके घुटनों पर बैठ गई और उसके हाथों को अपने माथे से लगा लिया। विक्रम मुझे मत छोड़ना, चाहे गाली दो धक्का दो लेकिन मत छोड़ना, मैं टूट जाऊंगी, कमरा सिसकियों से गूंज उठा। विक्रम ने झुककर उसे उठाया और अपनी गोद में बिठा लिया। उसने उसके बालों में हाथ फेरा, बार बार उसके सिर पर होंठ रखे। बस चुप हो जाओ। लेकिन मोनी चुप कहाँ होने वाली थी, उसका रोना और गहरा होता गया, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने विक्रम की गर्दन को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, समझते क्यों नहीं? विक्रम का चेहरा कठोर था पर उसकी आंखों में हल्की नमी उभर आई थी। उसने उसे अपनी बाहों में और कस लिया। मोनी उसके सीने से लिपट कर रोती रही मानो बरसों का दर्द उसी एक पल में बाहर निकल रहा हो। समय बीतता गया, रोशनी और भी मध्यम हो गई। मोनी की सिसकियां कभी धीमी कभी तेज होती रहीं। उसकी उंगलियां विक्रम की शर्ट पर लकीरें खींचती, उसके सीने को कसकर पकड़ती और हर बार एक नए आंसू का बोझ छोड़ देती। विक्रम ने आंखें बंद कर ली, उसके कानों में सिर्फ मोनी की टूटती हुई आवाज थी, मुझे मत छोड़ना। उस रात का सन्नाटा उनके दिलों की हलचल से भर गया था। मोनी की आंखें सूज चुकी थीं लेकिन आंसुओं का सैलाब थमता नहीं था। वो रोते रोते बस यही दोहराती रही, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और विक्रम चुपचाप उसे थामे रहा, जैसे उसकी हर पीड़ा को अपने सीने में कैद कर लेना चाहता हो।